नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भले ही पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हो, भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। सरकार 23 राज्यों में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण आज आयोजित कर रही है। भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत जहाज के चालक दल के 17 सदस्यों को बचाया। सभी 35 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। सीबीआई ने कोलकाता में 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद शेर शाहजहां के भाई और दो अन्य को गिरफ्तार किया और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला आज शाम नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हो, लेकिन भारत तेज गति से विकास करना जारी रखेगा। कल दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि पूरा देश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखना चाहता है।
आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूव ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का कह रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खबरों में बने रहने में नहीं बल्कि निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कुछ 100 में ही थी, वहीं आज ये संख्या लगभग 1.25 लाख है। उन्होंने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति इतनी बड़ी है कि अब देश के 600 से अधिक जिलों में यानी देश के लगभग 90% इलाकों में स्टार्टअप कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के ड्रोन पायलट बनने का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।
गांव की जिन महिलाओं ने कभी साइकिल तक नहीं चलाई होगी, वो अब गांव में ड्रोन पायलट के रूप में जानी जाती है। और ये सिर्फ एक ड्रोन देने का कार्यक्रम, वही मैं किसी नौजवान को भी दे सकता था। मैंने बहुत सोच समझ करके बहनों के हाथ में दिया है, क्योंकि आज भी किसी गांव में एकाध बेटी अगर ट्रैक्टर चलाती है तो पूरे गांव में अजूबा होता है, सर बेटी ट्रैक्टर, मुझे साइकिल को तोड़ना है।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटों में हटा लिया जाए। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के चित्र राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसका नंबर है 1950। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। पहले चरण में अगले महीने की 29 तारीख को लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 20 मई को 49 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को 57 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मेघालय और नागालैंड सहित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में मतदान होगा। कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा में 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ और असम में लोकसभा चुनाव 3 चरण में होगा। मध्य प्रदेश और झारखंड में 4 चरण तथा महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरण में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की भी घोषणा कर दी है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्टी सुशासन के अपने रिकॉर्ड और सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों के आधार पर जनता के पास जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने का आह्वान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेंगे। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने कहा कि पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी।
यह खेल है 2024 आम चुनाव पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से आकाशवाणी पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर,
देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
आज देश के 23 राज्यों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। आकलन परीक्षा में 3 विषय पाठन, लेखन और संख्या ज्ञान शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप यह परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। इस बार चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा इस परीक्षा के माध्यम से 100% साक्षरता की घोषणा कर सकते हैं। यह परीक्षा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे अध्यापन शिक्षण सत्र के प्रभाव का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षार्थियों को आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल प्राप्त करने के संबंध में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नौसेना ने सोमालियाई लुटेरों द्वारा अपहृत मालवाहक जहाज एमवी रुएन को मुक्त कराकर चालक दल के 17 सदस्यों को सुरक्षित छुड़ा लिया है और सभी 35 सोमालियाई लुटेरों को हिरासत में ले लिया है। नौसेना के अनुसार आईएनएस कोलकाता ने भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर अपहर्ताओं के नियंत्रण वाले इस जहाज को रुकने के लिए बाध्य किया। 40 घंटे चले इस अभियान के लिए युद्धपोत आईएनएस सुभद्रा, ऊंचाई पर उड़ान भर सकने वाले ड्रोन, गश्ती विमान और मार्कोस प्रहार कमांडो की मदद ली गई। पिछले एक दशक में सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में काफी व्यवधान उत्पन्न किए हैं। दिसंबर 2023 से अब तक इन जलमार्गों पर अपहरण और अपहरण के प्रयासों की कम से कम 17 घटनाएं हो चुकी हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोलकाता के निजाम पैलेस कार्यालय में 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शेख शाहजहां के भाई और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने टीम पर हमले के आरोप में शाहजहां के भाई शेख आलमगीर और अन्य को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। निदेशालय ने सुश्री कविता को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कविता के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। उन पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस महीने की 23 तारीख से सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की 5 दिन की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे तीनों देशों के साथ आपसी संबंध बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आबूधाबी के अग्रणी प्रौद्योगिकी समूह G42 ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी कंपनी सेरेब्रस सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है। इसके तहत सुपर कंप्यूटर कोंडोर गैलेक्सी 3 का निर्माण किया जाएगा। और अब खेल जगत की खबरें।
महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैग लेनिंग की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक अपने 8 में से 6 मैच जीते हैं। स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स ने अब तक अपने सिर्फ 4 मैच जीते हैं। उधर बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के पुरुष एकल सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से 12-21, 21-10, 15-21 से हार गए। अब आज होने वाले शिखर मुकाबले में इंडोनेशिया के एंथनी गेटिंग का अपने ही देश के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी से मुकाबला होगा। समाचार कक्ष से असर फिरोजी।
मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पूर्व और मध्य भारत में गरज के साथ छींटे पड़ने और वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस महीने की 20 तारीख तक बिजली चमकने के साथ बारिश होगी और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। अगले 6 दिन तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के तराई इलाकों में हल्की बारिश और साथ ही बर्फबारी होने की भी संभावना है। अगले 3-4 दिन दक्षिण भारत में अधिकतम तापमान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित सभी अखबारों ने 7 चरणों में आम चुनाव की निर्वाचन आयोग की घोषणा को विभिन्न शीर्षकों से सुर्खियों में दिया है। जनसत्ता के शब्द हैं, 47 दिन का चुनावी सफर चरण दर चरण। दैनिक भास्कर ने प्रत्येक चरण की तिथि देते हुए लिखा है, दिल्ली में 7 सीट 25 मई को। अमर उजाला ने लिखा है, 19 अप्रैल से 1 जून दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव, वोटर जी तैयार हो जाइए। हरिभूमि ने देश के मानचित्र पर हर राज्य की सीट देते हुए लिखा है, जय बोलो जनमन की। देशबंधु ने निर्वाचन आयुक्त के चित्र के साथ शीर्षक दिया है, महापर्व का शंखनाद। राष्ट्रीय सहारा ने मुख्य पृष्ठ पर आंकड़ों के साथ मतदान कार्यक्रम विस्तार से दिया है, नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 7 चरणों में सत्ता। अखबारों ने राजनीतिक गहमा गहमी और राजनीतिक दलों के सीट बंटवारे सहित अपने अनुमान और आकलन के साथ जोड़ तोड़ पर भी विस्तार से चर्चा की है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, किसकी कितनी तैयारी, अब जनता की बारी। निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते वक्त चित्र लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिए हैं। जनसत्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कटाक्ष को बॉक्स में दिया है कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं। हिंदुस्तान ने 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव का जिक्र साथ में किया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भले ही पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में हो, भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। सरकार आज 23 राज्यों में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण आयोजित कर रही है। भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री लुटेरों द्वारा अपहृत जहाज के चालक दल के 17 सदस्यों को बचाया। सभी 35 लुटेरों ने आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।